وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو گے، باموالکم وانفسکم، اپنے مال لگا کر اور اپنی جانیں لگا کر دونوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نمبر ایک ایمان اور نمبر دو جہاد، یہ دو کام بتائے گئے جنہیں تجارت سے تشبیہ دی گئی. ہمارے ہاں نجات حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، آخر ہم مسلمان ہی تو ہیں، کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. زندگی جیسے بھی گزرے گزارو، مگر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو، تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو. وہاں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ جہاد. آیت 35 ہے سورۃ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. فلاح پانے کے لیے کیا ہے راستہ؟ جہاد. جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، کوشش. کس بات کی کوشش؟ بندے اور اللہ کی رضا کے درمیان جو بھی کوئی چیز رکاوٹ بنے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر جانا چاہتے ہیں، گھر آپ کی منزل ہے، آپ یہاں سے اٹھے چلنا شروع کیا، تھوڑا آگے گئے دیکھا دروازہ بند ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے، دروازہ بند ہے کیا کریں، گھر تو آج جا ہی نہیں سکتے. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، یہ کون سی بری جگہ، یہیں بیٹھے رہتے ہیں، دل لگاتے ہیں اسی سے، ادھر ہی سو جائیں گے، ادھر ہی کھائیں پیئیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں کھانا نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ کھول لیں، تو کھلتا نہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کھٹکھٹانا شروع کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کے کھولے، پھر بھی نہیں کھلتا. تو آپ کیا کریں گے؟ توڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رستہ چاہیے جانے کو. اب دیکھیں ہم سب کا گھر کہاں ہے، کون سا ہے؟ یہ آگے لکھا ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. یہ ہے گھر، یہ ہے منزل، یہ ہے جگہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے. یہاں پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز جو راستے میں آ جائے اس کو ہٹانا، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے قوت سے، چاہے دوسرے کی مدد سے، چاہے مال سے، کسی بھی طرح. جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے، افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. اب آپ صرف زبان استعمال کر رہے ہیں، قلم سے بھی جہاد، لوہا بھی اللہ نے اتارا جہاد کے لیے، علم سے بھی جہاد، اسلحہ اگر استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی، مال لگانا پڑے تو وہ، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہم کو، جو کچھ بھی ذہانت قابلیت ہے ہمارے پاس، جو مال ہے وہ دیا کس نے ہے ہم کو؟ اسی نے دیا ہے. اگر اس کی رضا میں نہیں لگے گا، اس کی خوشی میں نہیں لگے گا، تو مزید خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ ایک دفعہ تو اس نے دے دیا مفت میں، اب اس نے شرط رکھ دی، اور چاہیے اور ہمیشہ کی چاہیے تو اس کو لگا کے خرید لو. ये सरमाया है तुम्हारे पास, ये कैश है, माल और जान दोनों कैश है, जन्नत खरीदो इससे, उसकी पसंद की चीजें लेकर, उन कामों में इसको इस्तेमाल करके जो उसे अच्छे लगते हैं। तो मिनून बिल्लाही व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे, अल्लाह की राह में जिहाद करोगे अपने मालों से, अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुमको ऐसे बाहों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होगी, अबदी क्याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा, यह है बड़ी कामयाबी। व उखरा, और दूसरी चीज भी देगा, तुहिब्बूनहा, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, क्या है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फतह। क्योंकि इंसान थोड़ा दिल है ना, वो चाहता है जल्दी नतीजा देखे, यहां भी मिल जाए उसको कुछ, फरमा वो भी मिल जाएगा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, दुनिया में भी दिखा देगा। वबशिरिल मुमिनीन, मोमिनों को बशारत दे दो। याद रखिए, मोमिन दो तरह के होते हैं, ईमान वाले दो किस्म के होते हैं। ये बड़ी अहम आयत है जिससे आपको अपनी जिंदगी में कुछ फैसले करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मसलन आप लोग यहाँ पढ़ने को आते हैं, अभी तक कंफ्यूज हैं कि सही भी काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत से लोग जो नहीं आ रहे तो क्या वो मुजरिम है? तो फिर हमने अपने ऊपर ये मुसीबत क्यों डाली? इस कंफ्यूजन का जवाब यहां से आपको मिलेगा। मोमिन दो तरह के होते हैं। नंबर एक, जो फराइज की सतह पर जिए, बस फराइज अदा कर दे, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, जकात दे दे, सदका खैरात कर ले, घर वालों की कुछ खिदमत कर ले, बस काफी है। और दूसरे, जो कुर्बानी की सतह पे जीते हैं, वो फराइज से आगे बढ़कर कुर्बानी करते हैं। एक है रुखसत, एक है अजीमत। रुखसत क्या है? कि दीन की रुखसतों सहूलतों से फायदा उठाना इस्लाम के दायरे में रहकर, और दूसरे कुछ लोग उन रुखसतों से आगे बढ़कर अजीमत की राह अपनाएं, अज़्म और इरादे के साथ जिए, कुर्बानी करके जिए। मसलन अगर आप इस वक्त अपने घर में होते, घर वालों की कुछ खिदमत कर रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? अपना फर्ज अदा कर रहे होते घर बैठकर। घर बैठकर इस्लाम पर अमल करना, एक अच्छा मुसलमान बनकर जीना, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई जुर्म की बात नहीं, कोई आप गुनाहगार नहीं हो रहे। लेकिन घर का आराम छोड़कर, घर की कुछ सहूलतें छोड़कर, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का अहद करना, दूसरों की भलाई का भी सोचना, सिर्फ खुद नमाजें नहीं पढ़ना औरों को भी पढ़वाने का सोचना, सिर्फ खुद सदका खैरात नहीं औरों को भी मोटिवेट करना, सिर्फ अपने अमन के लिए नहीं दूसरों के अमन के लिए जीना, ये वही कर सकता है जो अजीमत की राह इख्तियार करे, कुर्बानी के साथ जिए। एक मुसलमान के ये दोनों रवैये हो सकते हैं। आप अगर घर बैठकर नमाज पढ़ते, अपने घर के काम करते, तो आप कोई कसूरवार नहीं थे, एज लॉन्ग एज आप दीन के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे थे, अपने फराइज से गाफिल थे, तो वो तो बहरहाल जुर्म था, उसकी तो पूछ होना थी। मगर आप उस दर्जे से ऊपर उठकर अगले दर्जे पर आए कि जहां सिर्फ खुद नहीं जीना औरों को भी जीने का ढंग सिखाना है, सिर्फ खुद अच्छा नहीं बनना औरों को भी बनाना है, तो ये दूसरा दर्जा जो आपने इख्तियार किया, ये कुर्बानी का दर्जा है, इसको जिहाद कहा जाता है। ये बातें तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमें जरा अमली कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एक दूसरे को देनी है, मिलजुल के मशवरा करना है कि ये सिफात हमारे अंदर आई है कि नहीं आई, हम शरायत पूरी कर रहे हैं या नहीं, और कौन सा तरीका ऐसा इख्तियार करें कि हमको भूले ना ये सब कुछ। वरना आज तो जज्बात में हम कह रहे हैं हमने जाने भी दी, माल भी दिए, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कल जब ये आयतें हम, मसलन इस साल तो आप कुरान पढ़ रहे हैं, अगले साल हो सकता है आपकी मसरूफियात कुछ इस तरह हो कि इतना ना पढ़ने का मौका मिले जितना इस साल पढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो हम ये सब कुछ भूल भुला जाएं, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भुला दिए। अगर हमने सौदे में गड़बड़ की तो वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे अगर हम ये नहीं देते अपना आप अल्लाह की राह में तो हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, कौन पूछता है हमको? एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं। लेकिन जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया में भी और आखिरत में आपकी अपनी वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे एक शायर का शेर है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यानी अरब लोग जो थे कोई तवज्जो नहीं करता था उनकी तरफ। हजरत उमर बाद में रोते हैं जब उनके पास ढेरों माले गनीमत आते हैं, कहते उमर तू क्या था, तू तो एक मामूली सा शख्स था, बकरियां चराता था, ऊंटों की दुमे तेरे हाथ में होती थी, तुझे लोग इब्ने खत्ताब के नाम से जानते थे, लेकिन आज दीन की वजह से तुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा है। यानी जो जो माले गनीमत वगैरह उनके कदमों में ला कर रखे तो वो आंसुओं से लबरेज हो जाते थे कि ये सब इज्जत किसकी वजह से मिली, दीन की वजह से मिली। हम सब भी अपने आप को देखें कि हमें कौन पूछता था, हमारी क्या कीमत थी, हमारी क्या से थी। लेकिन जो जो हम अल्लाह के करीब होते हैं तो हम अच्छे मानों में भी और बसा औकात नेगेटिवली भी लोग आपको अहमियत देने लगे हैं। चाहे कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो भी क्या हो रहा है, आप अहम है उनकी निगाहों में, तभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं आपको, तभी तो आपकी तरफ निगाहें उठने लगी हैं। तो ये क्या करने लग गई है? अब क्या होता है, आप सबके साथ ये तजुर्बा हो रहा होगा, कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कोई आपसे तनकीद कर रहा है ना, सबके साथ, चाहे घर में, चाहे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स मिल रहे हैं। इससे पहले आपको कोई पूछता ना था, आप सबके लिए नॉर्मल थे। तो जो लोग सौदा कर लेते हैं, जो लोग बामकसद हो जाते हैं, फिर वो खुद ब खुद अहम भी हो जाते हैं, और जिसकी कदर कीमत अल्लाह की निगाह में हो जाए फिर अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिल में भी उसकी मोहब्बत उतार देता है। अच्छा फिर आप देखिए, फिर अमली सिफात पे आ जाइए। इन सिफात में सबसे पहली सिफत युकातिलूना फी सबीलिल्लाह की आई है। वो क्यों? इसलिए कि जो शख्स जान देने के लिए निकल आता है ना, वो 100% वफादारी करता है। बाकी लोगों का तो खामोश कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने अमली नमूना अमली सबूत दे दिया कि मैं जान दे सकता हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, कहीं अल्लाह के लिए मरने मारने की बात हो, आप में से कितने उठ के आगे बढ़ेंगे? यानी सबको जान प्यारी है, हा? इसलिए कि जरा सी कोई मुखालफत करे तो रोने बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, अब आज के बाद हमसे नहीं ये बातें सुनेंगे। इज्जत तो थोड़ी कुर्बान नहीं कर सकते, जान कहाँ करेंगे? नींद तो थोड़ी कुर्बान नहीं कर सकते, बाकी क्या करेंगे? जिस जिंदगी का छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते, बड़ा कहां से देंगे? तो पहली सफर जो है मारने और मरने की है। और याद रखिए, एक मारना मरना वो है जो ये ड्राइवर भी एक दूसरे के सामने जरा सी गाड़ी टकरा जाए तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं, उस तरह का मारना मरना यहां मुराद नहीं है। ये तो एक बाशऊर इंसान का नियत के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जान देना, जब तक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ना हो तो महज जज्बात में आके ऐसा करना जो है वो काफी नहीं। और फिर ये कि ऐसा शख्स जान दे के भी चैन नहीं पाता, वो क्या कहता है, जान दी हुई उसी की थी, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये जो मैंने जान भी दी तो ये तो उसी की थी। हक तो ये कि हक अदा न हो, जान दे के भी हक नहीं अदा हो सकता, कहां ये कि हम छोटे छोटे काम करके मुतमैन हो जाएं। तो ये तो है एक आला दर्जे का काम 100% गारंटी के साथ। लेकिन सिर्फ यही एक शिक नहीं, ये तो एक हिस्सा है और कभी कभार पेश आता है, हमेशा पेश नहीं आ सकता। लेकिन जो काम हम में से सब कर सकते हैं, और हमेशा कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। नंबर एक, अत्ताइबून। अब आप देखिए कि इस सिफत को हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। मैं अपने लिए पर्सनली तो ये सोच रही थी कि वो जो शादी के कार्ड नहीं आते, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड होते हैं, उसके पिछले हिस्से खाली होते हैं, कुछ नहीं लिखा होता उन पर, और जरा मजबूत भी होते हैं। कागजों पर लिखे चीजें तो चुड़ मुड़ जाती हैं, कभी कापियों पर लिखे तो बंद ही रह जाती हैं। तो अपने लिए चेक लिस्ट के तौर पर एक कार्ड बना लूं और उसके ऊपर लिख लूं नंबर एक, अत्ताइबून। रोज उस कार्ड को निकालूं और अपना जायजा लूं, मुहासबा करूं कि आज मैंने कितनी दफा तौबा की है, कौन सी गलती की और उस पर क्या तौबा की है, तौबा के लिए क्या तरीका मैंने इख्तियार किया हुआ है, क्या नफल पढ़ती हूँ, सदका करती हूँ, यानी अमली तौबा कैसे करती हूँ। तायबून से मुराद क्या सिर्फ जबानी जबानी तौबा तौबा करने वाले हूँ, इससे मुराद अमली तौर पर गुनाहों से वापसी का रास्ता है, गुनाहों से गलत कामों से पलटना, वापसी। कौन से गलत काम है जो मैं अभी तक कर रही हूँ, क्या उनसे वापस पलटी हूँ या नहीं पलटी। और फिर चूंकि हम सब इंसान हैं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं, कभी जज्बात में आके, कभी गुस्से में आके, कभी खुशी में, कभी पता नहीं किस तरह, कभी किस तरह, कभी कहीं फिसलते हैं, कभी कहीं गिरते हैं, कभी कहीं पटकते हैं और फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं, मैं तो अच्छी बन ही नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं, इतनी तो मुझसे रोज गलतियां हो जाती हैं। मैं सोचती हूँ मैं आज घर जाके बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई ऐसी चीज नजर आ जाती है जिससे आप फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। कभी बच्चों को डांट रहे हैं, कभी हस्बैंड से लड़ रहे हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, और कुछ नहीं तो बैठते ही गाड़ी में ड्राइवर के ऊपर बरसना शुरू कर दिया, कहाँ चले गए थे गाड़ी लेके, सामने क्यों नहीं खड़े हुए थे, वगैरह वगैरह। फिर आप जब आराम हो जाता थोड़ी देर, फिर आपको ख्याल आता किया तो बहुत ही खराब है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और फिर उस वक्त क्या करते हैं जब आपको ये ख्याल आ जाता ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल आ गया ये नहीं करना चाहिए, फिर क्या किया आपने अपनी इस्लाह के लिए। ये है वो काम जिस पर आपको प्रैक्टिकली कुछ करना है, या नफल पढ़ें या सदका करें, यानी कुछ भी उस वक्त तौबा की कोई अमली शक्ल इख्तियार करें, कोई भी जुर्माना अपने ऊपर मुकर्रर कर लें। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो मैं इतना सदका करूंगी, और अगर नहीं है पैसे तो कोई चीज अपनी निकालें, कुछ करें। और कभी कभी जब ज्यादा ही गलत काम करें तो अपनी सबसे पसंदीदा चीज निकाल कर दे दें, ताकि समझ तो आया आपको। हम हजार दफा भी वादा करें ना, कसमें खा के भी, कि अब नहीं ये करेंगे, आप देखना तो सही, जब करने का मौका है तो भूल जाएंगे और फिर हो जाएगा। हम इंसान हैं, इस फैक्टर को कभी ना भूलें, हम इंसान हैं, ना चाहने के बावजूद गलती करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शैतान ने ऐसा बुलवाया पता ही ना चला, कभी कोई इंसान सबब बन जाता है, कभी शैतान वसवसे डालता है, कभी कोई अपने नफ्स के अंदर से कोई ऐसी चीज उठती है कि इंसान को भूल जाता है कि ओह ये तो नहीं करना था। अच्छा ये जो होता है ना, जब ओह हो जाए ना, ओह नहीं करना चाहिए था, ये ख्याल आ जाए, ये बड़ा क्रिटिकल वक्त होता है, इसमें अपने आप को थाम ले फिर। यही तायबून की सिफत होती है कि जो ये कह उठते हैं नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, एतराफ, फौरन एतराफ, क्योंकि जो एतराफ ना करे वो तौबा नहीं कर सकता, उसका सौदा गया। और थोड़ी देर लगती है इतराफ करने में, कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन मनाना पड़ता है अपने आप को। आपके अपने अंदर लड़ाई होती रहती है, अब किस तरह फाइट करो, इधर से तावील, उधर से उधर से, मान ले बस किया है, मान ले, सो व्हाट। फिर उसके बाद अगली सिफत, अलाबिदून। इबादात में क्या क्या आता है, अपनी नमाजों का जायजा लें, हर नमाज के बाद या कम अज कम हर दिन में जब कार्ड उठाएंगे ना अपना एहतिसाब कार्ड या कुछ भी, तो अपनी नमाजों के बारे में सोचें कि नमाजें वक्त पे पढ़ी, सही पढ़ी, तहारत का सही एहतमाम किया था, खुशू खुजू था या नहीं, यानी जो उसकी शरायत और आदाब है उनको एक थोड़ा सा छोटा छोटा लिख ले। फिर उसके बाद ये कि अपने रोजों के बारे में सोचें, कितने फर्ज रोजे बाकी हैं जो कजा रखने हैं आपको, इसी तरह जकात, हज फर्ज है तो उसके लिए क्या कोशिश की। तो इबादात में खासतौर पर ये इबादात शामिल है, ठीक है, नमाज, रोजा, हज, जकात। फिर अल्हामिदून, शुक्रगुजारी। आप देखिए कि जितनी आपकी दिन भर की दुआएं उनमें कितनी दफा अल्हम्द का जिक्र आता है ना, सुबह उठते ही दुआ, फिर इसी तरह खाना खाने के बाद, टॉयलेट से निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, छींक आने पर। फिर इसी तरह कोई भी नेमत जो दिन में मिले उस पर, और फिर तौबा की तौफीक पर, इबादत की तौफीक पर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से तकबर ना आए इबादत करके, शुक्रगुजारी आए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने अच्छी नमाज पढ़ ली या अपना फराइज पूरे कर लिए। फिर अस्सायहून, सायहून का एक माना रोजादार भी किया गया, लेकिन जो तर्जमा मैंने आपको बताया सियाहत के मानों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सियाहतु उम्मती अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और फिर खवातीन के लिए जो सायहात का लफ्ज आता है अज़वाज मुतहरात के लिए सूरत तहरीम की आयत नंबर 5 में, तो सायहात या सायहून जो है वो कौन है जो अल्लाह के रास्ते में गर्दिश करते हैं, निकलते हैं, जिसमें तलब इल्म सबसे पहले आता है। कुछ आएगा खुद को तो फिर ही कुछ और कर सकेंगे ना, बाकी मरहले तो बाद में आते हैं। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलना, फिर तालीम देने के लिए, फिर रफाहे आमा के कामों के लिए, क्योंकि बेवा और यतीम की खबरगिरी करने वाले जो है उनका भी बड़ा अजर है। फिर इसी तरह हिजरत, फिर जिहाद। तो इसमें कुछ काम जैसे मखसूस मर्दों के लिए हो सकते हैं जैसे जंग वगैरह में शिरकत, लेकिन आज जैसे उम्मत मुस्लिमा इंटेलेक्चुअल वॉर का शिकार है तो उसमें जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल, उसमें खवातीन भी शरीक हो सकती हैं। फिर ये कि आपकी जिंदगी के अदवार जो है वो मुख्तलिफ हैं, मसलन अभी आप में से बहुत से लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनके पास बहुत फरागत है, खा वो कितने बहाने उजर करें, नहीं ये मजबूरी है, कोई मुश्किल नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर हैं, बहुत एनर्जी आप में, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, खूब खूब पढ़ें, खूब खूब सीखें, और एक एक लम्हा जो है अपना उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको आता हो। फिर उसके बाद ये है कि कल को आपको तबलीग भी करनी है, तालीम भी देनी है, और फिर इस्लाह खल्क भी करनी है और खिदमत खल्क भी करनी है, तो इसके लिए अपने औकात को तकसीम कर सकते हैं आप। फिर हिजरत और जिहाद, और अगर बच्चों को आप स्कूल छोड़ने जा सकती हैं तो मस्जिद क्यों नहीं छोड़ने जा सकती, यानी माएँ अगर ये अपनी ड्यूटी समझती हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचाना है तो बेटों को किसी वक्त मस्जिद तक भी लेके जाएं, वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल उसमें कई चीजें आ सकती हैं। यानी आप अपने बारे में सोचें कि सायहात की सिफत पर अमल करने, क्योंकि ये लफ्ज सिर्फ सायहून नहीं, सायहात अलग भी है, मुअन्नस के सीगे में भी कुरान में, ये सिफत आपके अंदर कैसे हो सकती, कहाँ कहाँ आप निकल सकती हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस काम के लिए आप निकल सकती हैं, किस किस काम के लिए आपको घर से नहीं निकलना चाहिए, किन हालात में निकल सकती हैं, किन हालात में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि औरत के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अल्लाह की हदूद ना तोड़ दें, ठीक है। फिर वही बात के शक ना हो आपके अंदर, यकीन और दलील के साथ आप अपने उसके ऊपर मजबूत चट्टान पर खड़े हों। फिर अर्राकिउन, रुकू करने वाले, इससे मुराद रुकू और सजदों की कसरत भी है, अर्राकिउन और साजिदून दोनों को मिला के भी आप कर सकते हैं, प्लस ये कि इसमें आबिदून के बाद दोबारा जब ये चीज आई है नफल इबादत की तरफ भी तवज्जो हो सकती है, मजीद आजजी इंकिसारी, किसी के आगे दब जाना, झुक जाना, मार खा लेना, डांट खा लेना किसी की, और फिर कुछ ना कहना जवाब में, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ठीक है। जब आप दीन के लिए और अल्लाह के लिए किसी तवाजो करते हैं तो उसके लिए हदीस में बहुत बड़ा अजर बताया गया, मन तवादा अलिल्लाहि रफअहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाजो इख्तियार की अल्लाह उसको बुलंदी अता करेगा, जो अल्लाह के लिए झुक जाए अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। वक्फ जनाहक लिल्मुमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अपने कंधे मोमिनों के लिए झुका के रखें, अपने साथियों के लिए आजजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे मुतवज्जे होते थे उसकी तरफ, हमारी आजजी हमारे अपने ही साथियों के लिए और अपने ही दोस्तों के लिए और अपने ही शागिर्दों के साथ और अपने ही उस्तादों के सामने, इवन वो भी कोई नहीं। हमारे यहाँ स्कूलों में क्या होता है या टीचिंग स्टाफ का अमूमन रवैया क्या होता है, इतने डोमिनेटिंग लहजे में बात होती है हमेशा, इधर आइए ये ना कीजिए, वो ना कीजिए, ऐसे लगता है एक एक डंडा बरस रहा है एक एक जुमले के साथ। और हम उन्हीं को, चूंकि बचपन से वो सब देखा होता है, वही आइडियलाइज करने लगते हैं। अनकॉन्शियसली हम वही कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि बचपन से ही देख रहे हैं ना, तो हमारे अंदर भी रच बस जाता है वो सब कुछ। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शान थी किसी की? कोई नहीं बड़ा आपसे इंसानों में से, लेकिन आपका रवैया क्या था? आपको तो कभी ये खौफ नहीं आया कि नहीं अगर मैंने शागिर्दों के साथ नरमी की तो सर चढ़ जाएंगे? ये हमारे यहाँ एक अजीब फलसफा है कि सर चढ़ जाएंगे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो लिटरली आपके पुश्त पे चढ़ जाते थे। बच्चों के साथ क्या मामला था आपका? हम क्यों इस खौफ में रहते हैं कि हमारे सर चढ़ जाएंगे, इसलिए इनके साथ सख्त रहो, नरमी से बात ना करो। किसी की सुने तो सही, क्या कहता है, सुनने की कोशिश तो करें, समझने की कोशिश तो करें। तो जब तक हमारे अंदर सुन्नत का इत्तबा नहीं आएगा ना, कामयाबी नहीं हो सकती। तो अर्रा के उन साजिदों, ये कंधे, ये सर, ये पेशानी, सारे के सारे झुकवाए जाते हैं लिटरली दिन में 5 दफा। झुको, बेंड करो। तो जिस दिन में 5 दफा झुकने का ये एक्सरसाइज कराया जाए, वो फिर भी तकबर में मुबतला हो, फिर भी वो अकड़ी हुई हो, तो फिर तो वही है ना कि मिसाल बहुत खराब है कि अगर कुत्ते की दुम को 100 साल भी उसमें डाले रखे हैं शीशे की नली में, तो निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही होगी। ऐसे लोग जितनी भी रियाजतें कर लें, उनके ना लहजे में नरमी आएगी ना उनकी अंदाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था? इतनी जबरदस्त आयत मुझे लगती, वख़्फ़िज़ जनाहका लिल्मुमिनीन। हालांकि दूसरी जगह क्या आया है, आम मुसलमानों के लिए अपने वालदैन के लिए कंधे झुका के रखिए। यहाँ आप बड़े हैं और आपको कहा जा रहा है अपने से छोटों के लिए कंधे झुका के रखिए। क्या खूबसूरत तालीम है। यानी आपके जो सुनने का अंदाज होता था, आपकी जो तवज्जो का अंदाज होता था, उसको फॉलो करने की जरूरत है। जो मस्नूई बैरियर्स हैं अपनी शख्सियत के आसपास, उनको काटने की कोशिश करें। हम सब किसी न किसी दर्जे पर, सबसे पहले तुम अपने आप ही को कहूंगी, मैं ये बातें करके यकीन माने खुद को सुनाती हूँ क्योंकि ये मेरे से मुतल्लिक है, मुझे ये काम करना है, इसलिए कि सुख मैंने आपकी इस्लाह तरबियत की जिम्मेदारी ली हुई है। और उसके बाद आप सबसे भी यही कहूंगी कि जब भी आप दीन का काम करने लगे, जरा झुक जाइए, कोई बात नहीं। अगर किसी ने आपको कुछ सख्त कह दिया, कुछ नारवा बात कर दी, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जान का सौदा किया हुआ है। यानी दुनिया का हमारे को मतलब हो तो हम कहते हैं ना, वो एक मशहूर मुहावरा है कि गधे को भी उस्ताद बना लो, यानी खुशामद कर लो, यानी अपनी दुनिया के काम निकालने के लिए। दुनिया के काम निकालने के लिए लोग चापलूसियां करते हैं, खुशामदे करते हैं हकीर फायदों के लिए। तो हम दीन के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप चापलूसी और खुशामद जैसे झूठे काम करें, लेकिन दीन के लिए सच्ची मोहब्बत के साथ अगर किसी से नरमी और मोहब्बत से पेश आए, क्या जाता है आपका? कुछ नहीं जाएगा, आजमा के देख लीजिए। बाज़ों का ऐसा होता है ना, लोग आपको लाजवाब करने की कोशिश करते हैं, कहीं हराने की कोशिश करते हैं मजलिसों में, बहसों में। हार जाइए, हम हार गए, जीते आप, कोई बात नहीं, इस हारने में ही जीत है। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبشر المؤمنين.